समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया।
Grand 3-day celebrations commence in Ayodhya commemorating first anniversary of the consecration ceremony of Ram Lalla at Ram Temple.
असम में दीमा हसाओ में कोयला खदान से बचाव दल ने एक और शव निकाला।
Northern states reeling under severe cold wave conditions. In Ladakh, temperatures plummet to extreme low, with Jorzila recording minus 31 degrees Celsius. And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Human Trafficking Awareness Day.
बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन मानव तस्करी के गंभीर मुद्दे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Yes, and human trafficking is a recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt or people through force, fraud or deception with the aim of exploiting them for profit. Men, women and children of all ages and from all backgrounds can become victims of this crime, which occurs in every region of the world. The traffickers often use violence or fraudulent employment agencies and fake promises of education and job opportunities to trick and coerce their victims.
बिल्कुल अभिषेक, जहां तक मानव तस्करी का सवाल है तो आधुनिक समय की गुलामी का ये एक प्रकार है जिसमें लोगों को जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से उनका इस्तेमाल श्रम, यौन शोषण या अन्य लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए किया जा सके। ये एक वैश्विक समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है।
Absolutely, and this day brings attention to a crime that leaves a lasting toll on human life, families and communities around the world. Because each individual in the world deserves a good life, a healthy way of life and the lack of fear when they lead lives. But because of practices like human trafficking, victims of this practice are robbed of the joy of living and are forced to carry on a life with punishment, terror and crime to the expense of the way of life and well-being.
बिल्कुल, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों की स्थिति और उन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिन्हें इस गंभीर समस्या से बाहर निकाला जाना है। जबरन श्रम, बाध्य अपराध, जबरन यौन शोषण, अंगों की निकासी और तस्करी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मानव तस्करी की जाती है।
Yes sir, you know what Mukesh, even though we may not always be aware of it, slavery still exists in the world and lakhs of individuals are displaced and trafficked from their homes to far off nations every year.
बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार प्रत्येक 3 में से 1 बच्चा पीड़ित है और इन तस्करी के लिए किए गए बच्चों में से अधिकांश लड़कियां होती हैं। ये दिन जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और ये गारंटी देने के लिए समर्पित है कि लोगों की तस्करी ना हो। ये हमें पीड़ितों की स्थिति को समझने, उनके प्रति सहानुभूति रखने और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने में सहायता करने में भी मदद करता है।
So let's take a look at the major causes of human trafficking, which include poverty and economic disparities. Economic hardships drive individuals into vulnerable situations, making them susceptible to promises of better opportunities that traffickers exploit.
बिल्कुल, एक और कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी। जी हाँ, तस्करी के खतरों के बारे में सीमित शिक्षा और जागरूकता लोगों को तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों से अनजान होती है जिससे वे आसानी से शिकार बन जाते हैं।
Yes, another possible critical thing could be the conflict and instability and displacement. Areas affected by conflict, political instability, or natural disasters create environments rife for exploitation as people seek refuge or stability elsewhere.
जी हाँ, सामाजिक हाशिए पर होना और भेदभाव भी इस समस्या का कारण है. इनमें महिलाएं, बच्चे, प्रवासी और अल्पसंख्यक जैसे कमजोर समूह अक्सर सामाजिक भेदभाव और समर्थन संरचनाओं की कमी के कारण अधिक असुरक्षित होते हैं.
Yes, and then also demand for cheap labor and services as industries seeking low cost labor services sometimes turn a blind eye to exploitative practices perpetuating trafficking for labor exploitation.
ऑनलाइन शोषण और प्रौद्योगिकी भी इसका एक कारण हो सकती है. प्रौद्योगिकी में प्रगति ने ऑनलाइन भर्ती को आसान बना दिया है, जिससे तस्करों के लिए विभिन्न धोखाधड़ी वाले तरीकों से पीड़ितों को फंसाना आसान हो गया है.
Yes, and it leaves a major impact on the victims. Trauma and psychological effects. Well, victims endure severe psychological trauma, including depression, anxiety, and a sense of betrayal, leading to long-term mental health issues.
जी हाँ, और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी इसका एक कारण है. पीड़ित अक्सर शारीरिक शोषण, उपेक्षा और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का सामना करते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताएं और दीर्घकालिक चोटें हो सकती हैं.
Yes, then comes the issue of loss of freedom and rights. Trafficked individuals lose their autonomy and basic human rights, often living in constant fear, subjected to control and exploitation.
सामाजिक कलंक और अलगाव भी इसका एक कारण हो सकता है. पीड़ितों को सामाजिक कलंक और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे बचाए जाने के बाद भी समाज में पुनः शामिल होना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
Then also comes the global consequences. Human trafficking fuels a global criminal network, affecting countries' social fabric, economies and international relations, undermining global human rights efforts. The proliferation of online platform poses additional risks as children often connect to these sites without adequate safeguards.
बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को तस्करी के विभिन्न रूपों का शिकार बनाया जाता है, जिनमें जबरन श्रम, अपराध, भीख मंगवाना, अवैध गोद लेना, यौन शोषण और शोषणकारी तस्वीरों का ऑनलाइन प्रसार शामिल है. कुछ बच्चों को सशक्त आतंकी समूह में भी शामिल किया जाता है.
Yes, and the reasons for child trafficking are also numerous. Some of the most prominent are poverty, insufficient support for unaccompanied minors in the face of increased migration and refugee flows, armed conflicts, dysfunctional families and lack of parental care.
अब तक बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई प्रभावी नहीं रही है. संवेदनशील समूहों की सुरक्षा और बाल पीड़ितों की सहायता के लिए समग्र उपायों की तत्काल जरूरत है. इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयासों की भी आवश्यकता है.
Yes, and states must prioritize the protection of children, strengthen laws, improve law enforcement and provide more resources to combat child trafficking.
और रोकथाम के उपायों को गरीबी और असमानता जैसी मूल समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित होना चाहिए. बिना संरक्षक वाले शरणार्थी बच्चों की तस्करी पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बच्चों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए बाल सुरक्षा नेटवर्क को सशक्त करना और आपराधिक कानून को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है.
Yes, another very disturbing trend, Mukesh, these days is that human traffickers have become adept at using internet platforms, including social media channels, online marketplace sites, and freestanding web pages to recruit victims and attract clients, isn't it?
बिल्कुल, जितनी तकनीकी प्रगति हो रही है और उसका भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका कारण बनता है कि मानव तस्करी में भी बढ़ावा हो रहा है. तस्कर या तो सक्रिय रूप से उन लोगों की पहचान करते हैं जिन्हें वे तस्करी के शिकार होने के लिए कमजोर मानते हैं, या वे संभावित पीड़ितों को विज्ञापन के माध्यम से संभावित पीड़ितों की प्रतिक्रिया करने का इंतजार करके ऐसे लोगों को फंसाते हैं.
So now let's look at some ways in which to protect yourself and your loved ones against human trafficking. Firstly, set strict privacy settings. If your social media accounts are public, then anyone can see your photos, posts and other information. Traffickers have used this information to reach out and recruit victims. Consider setting your accounts to private and turn off location sharing on posts.
जी हाँ, इसके अलावा अजनबी मित्रता अनुरोधों से भी सावधान रहें. केवल उन्हीं लोगों से मित्रता या अनुसरण अनुरोध स्वीकार करें जिन्हें आप जानते हैं, भले ही आपके सामान मित्र हों. तस्कर सोशल मीडिया के जरिए अजनबियों से चैट करने के लिए संपर्क करते हैं. और फिर धीरे धीरे संभावित पीड़ितों के साथ विश्वास बनाने का प्रयास भी करते हैं।
एंड नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मुकेश इज डोंट ओवरशेयर। रिमेंबर दैट एवरीथिंग यू पुट ऑनलाइन फोटोज टेक्स्ट एक्सेट्रा इज इन द पब्लिक डोमेन। यू नो लॉन्गर हैव टोटल कंट्रोल ओवर हाउ इट इज बीन सीन और शेयर्ड। ट्रैफिकर्स हैव यूज्ड पीपल्स फोटोज एंड पर्सनल डिटेल्स टू हेल्प देम ब्लैकमेल, कॉन्टैक्ट, ग्रूम, अदरवाइज रिक्रूट एंड मॉनिटर विक्टिम्स। नेवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज अ फोन नंबर, एड्रेस और लाइव लोकेशन ऑनलाइन।
बिल्कुल, ऐसे विज्ञापनों से भी सावधान रहें जो बहुत अच्छे लगते हैं। तस्कर अक्सर ऑनलाइन नौकरी के विज्ञापनों में आकर्षक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो सरल काम के लिए अच्छा वेतन या मॉडल बनने का मौका देने का वादा करते हैं। तस्कर अक्सर कंपनी की साख, विवरण या आपकी रोजगार शर्तों के बारे में अस्पष्ट होते हैं। अगर ये सब बहुत अच्छा लगता है तो शायद ऐसा है ही नहीं।
Yes, and stay vigilant in the online sphere and report suspicious pages or activities to the authorities. Don't hesitate to unfriend, block or report someone who's harassing you or talking to you in a way you don't like. Click on the links to see how to block accounts on social media. Take screenshots of the message or post that might be useful later for an investigation or law enforcement. And let's look at the way forward out of all of this, Mukesh. Implement comprehensive education programs to inform communities, especially vulnerable groups, about the risks and tactics of traffickers. Governments must enforce existing laws effectively and consistently while strengthening legislation to provide better protection for victims and harsher penalties for traffickers, and also provide adequate resources and training to law enforcement agencies to combat trafficking and handle victim cases sensitively.
बिल्कुल, पीड़ितों के लिए समर्थन और पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पीड़ितों के लिए व्यापक केंद्रित समर्थन प्रणालियां स्थापित करें जिसमें आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग और जीविकोपार्जन प्रशिक्षण शामिल किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि पुनः समायोजन कार्यक्रम पीड़ितों को उनके जीवन को पुनः स्थापित करने और समाज में बिना किसी कलंक के पुनः शामिल होने में सहायता करें। और अभिषेक, अब समय आ गया है अपने संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है, तो बताएं सबसे पहले कहां चलेंगे।
Yes, we'll talk about the Viksit Bharat and Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 is currently ongoing at the Bharat Mandapam in New Delhi, and on the first day of this event today, Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia highlighted that the event is in line with the Prime Minister's Independence Day call to engage 1 lakh youth in politics without political affiliations. He mentioned that after the interaction, the government will organize various annual leadership and social service events as well as provide them with national and international exposure. Prime Minister Narendra Modi will also interact with 3,000 young leaders at the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 in New Delhi on the occasion of National Youth Day tomorrow.
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 is aimed at providing a unique platform for youth to present innovative solutions for developed India. This event has provided an opportunity to young leaders to engage directly with policymakers, national and global icons, while contributing their ideas for shaping the nation's future. Young leaders from across the country have participated in various events to articulate their ideas for Viksit Bharat, with the participation of close to 30 lakh youth. A total of 3,000 dynamic and motivated youth have been selected to participate in this dialogue. The youth participating in the 3-day event are being mentored by eminent personalities including ISRO chairman S. Somanath and former G20 Sherpa Amitabh Kant. Highlighting the significance of the event, ISRO chairman S. Somanath said that with this platform, youth will get an opportunity to contribute to the nation by addressing nation's first approach.
Youth need to be brought up, and this requires them to be dedicated to the cause of the nation. Wherever field they work, whichever domain they would like to work, there is a possibility that each one of you can contribute to the growth of the nation by addressing nation first approach.
Besides, former G20 Sherpa Amitabh Kant highlighted that development in India is possible with the dynamic approach of young minds.
Bharat ko agar aage badhna hai to ye Bharat ki jo energy hai wo puri ki puri yahan ka yuva varg layega, aur jo nayi thinking layega, jo naya dynamism layega wo yahan ka yuva वर्ग लाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है भारत के सारे पंचायत सारे जिलों से लाकर।
The participants are engaging in thematic presentations and competitions focusing on 10 identified themes. These include Vikas Bhi Virasat Bhi, empowering youth for Viksit Bharat, enhancing productivity in agriculture, making India the startup capital of the world and building the infrastructure for the future. For Parikrama with Pallavi Parmar, Bhanu Pratap Singh.
और अब चलते हैं हरियाणा। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करती हुई स्कूलों का कायाकल्प करेगी। तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां शिक्षकों की कमी हो। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए स्कूलों में खेल और स्वच्छता को अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। श्री नायब सिंह ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा कि वो 12वीं कक्षा के बाद किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हरियाणा से बाहर भी यदि कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी भी जानकारी रखी जाएगी, ताकि हरियाणा का कोई भी बच्चा शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित न रहे। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
और हरियाणा के बाद अब अभिषेक चलते हैं त्रिपुरा।
यस एब्सोल्युटली मुकेश, एंड आई थिंक इट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे हु सेड दैट अ बुक्स आर अ पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड। वेल एनीवे, बुक्स डीपन एंड वाइडन एंड एक्सपेंड अ सेंस ऑफ लाइफ। दे फीड द सोल, द एरोमा ऑफ न्यू बुक्स एंड द बाउंडलेस जॉय दे ब्रिंग अ अनपैरेलल्ड, पुशिंग ह्यूमंस टू एक्सपेंड द होराइजंस। एंड करंटली इन त्रिपुरा अगरतला बुक फेयर इज ऑन, सो लेट अस गो टू आवर अगरतला कॉरेस्पोंडेंट फॉर मोर डिटेल्स।
The Agartala Book Fair hosts a variety of literary events with a divine call, Sarvesham Shantir Bhavatu, a Sanskrit chant coined from Brihadaranyaka Upanishad means may peace prevail for all. The Agartala Book Fair that steps into its 43rd year began on 2nd of this month and will remain open for 12 days and conclude on January 14th. This literary event appears to be a confluence of poets, authors, publishers and bibliophiles and has a key contribution to the state's literary landscape, ranging from the children's work, comics to the fiction, non-fiction, artworks, little mags and scholarly works. Amidst a pseudo-fear from the magnificent digital world and new media where the crowd can't be visible yet, the Agartala Book Fair perhaps proves the Himalayan height of the printed book world and physical book event. Joydeep Chattopadhyay, the fifth generation descendant of the legendary poet and novelist Bankim Chandra Chattopadhyay, who composed India's national song Vande Mataram, was a special luminary who graced the book fest. On the inaugural program, Chief Minister Dr. Manik Saha called for resuming the old tradition of gifting books on social celebrations, while Industries Minister Shantana Chakma said the book fair brings us to the evergreen and immortal friend that because books never grow old, they always feel new whenever you read them. These days, the fair premises at Agartala International Fairground draws thousands of bookworms, book lovers, as you may call them, and people of all ages, irrespective of caste, language and religion. They are found hopping from stalls to stalls to read and buy books, taking part in literary discussions, poet summit and recitation seminar and cultural programs. While attending the Agartala Book Fair, Mr. Nibir Sen, the principal of Agartala based Shishu Vihar High Secondary School, shared his thoughts with Akashvani News.
Large number of youths are coming over and are taking interest to go through the books, which is really a great positive point.
Pratyosh Ranjan Dev, a writer and retired professor, said the Agartala Book Fair is indeed significant for varied reasons. First, this has been carrying logistical support from the state government since its advent 42 years ago.
I hope the 43rd Agartala Book Fair will attract more and more book lovers and peoples from cultural arena.
The National Health Mission of Tripura has set up a Nikshay camp in the fairground to identify and treat tuberculosis as part of the TB Mukta Bharat campaign. For Parikrama with Subhashish Chanda, this is Kunal Shinde, Akashwani News, Agartala.
और त्रिपुरा से अब चलते हैं बिहार। बिहार में कृषि विभाग ने कृषि संबंधी समस्याओं का लाभ अधिक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष पहल करते हुए बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत की है। पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में ये रेडियो काम करने लगा है। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
इस पहल से किसानों को खेती बाड़ी की समसामयिक सूचनाएं, मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिकारियों को किसानों के साथ संवाद करने में भी सुविधा होगी। बिहार कृषि रेडियो आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक प्रसारण उपकरणों से सुसज्जित है। कृषि रेडियो के स्टूडियो को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह एक डिजिटल रेडियो सेवा है जिसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन बिहार के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह रेडियो सेवा कृषि संबंधी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी को त्वरित और प्रभावशाली तरीके से उपलब्ध कराएगा। बिहार कृषि रेडियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ऑडियो और वीडियो कंटेंट पॉडकास्ट के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। किसान इन सामग्रियों को किसी भी समय कहीं से भी देख और सुन सकेंगे। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि यह रेडियो सेवा किसानों को सशक्त बनाएगी।
तो अब युवा आकर्षित हो रहे हैं कृषि की ओर, और आकर्षित होने का सीधा सा कारण है कि आज हमारे युवाओं को इस कार्य में काम करते हुए लाभ दिख रहा है। तो जब आमदनी बढ़ी है तो निश्चित रूप से उसमें कृषि का बड़ा योगदान है, और युवाओं को पहले ये लगता था कि कृषि लाभ का कार्य नहीं है या कृषि कार्य में लगना समय का नुकसान करना। अब जब हमारे युवा किसान देख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि लाभकारी हो गया है, हमको विभिन्न फसलों के उत्पाद का अच्छा कीमत मिल रहा है।
बिहार कृषि रेडियो सेवा न केवल स्मार्टफोन बल्कि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और लोकप्रिय रेडियो प्लेटफॉर्म रेडियो गार्डन पर भी उपलब्ध रहेगा। कृषि रेडियो के माध्यम से किसानों के फीडबैक को भी रिकॉर्ड कर प्रसारण केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। इससे कार्यक्रमों को श्रोताओं की जरूरतों और उनके सुझावों के अनुसार और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से भी किसानों को कार्यक्रमों के डाउनलोड लिंक भेजे जाएंगे। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
और अभिषेक, अब बताएं कि खेल जगत की हलचल में क्या कुछ आपके पास खबरें हैं।
इन मेंस हॉकी इंडिया लीग, तमिलनाडु ड्रैगन्स डिफीटेड सराची रार बंगाल टाइगर्स 2-1 इन अ थ्रिलिंग मैच प्लेड एट द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला लास्ट इवनिंग। एंड इन बैडमिंटन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन, द इंडियन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रणकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी फेस्ड अ डिफीट अगेंस्ट साउथ कोरियन ड्यू ऑफ सियो श्वांग जे एंड किम वन हो 10-21, 15-21 इन द सेमीफाइनल ऑफ द मेंस डबल्स in Kuala Lumpur today. Early in the quarterfinals, the Indian duo secured straight game victory over Malaysia's Yu Sin Ong and Yi Yi Teo with scores of 26-24 and 21-15. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सके।
In today's episode we remember freedom fighter and second prime minister of India Lal Bahadur Shastri, who died on the 11th of January 1966. He was deeply influenced by Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi and Annie Besant, and joined the Indian independence movement in the 1920s under the guidance of Mahatma Gandhi. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965 and inspired the Indians with the slogans Jai Jawan, Jai Kisan.
Jai Jawan, Jai Kisan.
Lal Bahadur Shastri was born near Varanasi in Uttar Pradesh. Dedicated to studies from childhood, Shastri walked many miles to his school in Varanasi without shoes, even when the streets burned in the summer heat. As he grew up, he was drawn towards the Indian independence movement. At the mere age of 11 years, he was greatly impressed by Mahatma Gandhi.
In January 1921, when Lal Bahadur was in the 10th standard, and 3 months from writing the final examinations, he attended a public meeting in Banaras hosted by Gandhi and Pandit Madan Mohan Malviya. Inspired by the Mahatma's call for students to withdraw from government schools, Shastri withdrew from the school the next day and joined the non-cooperation movement. Later, he joined the Kashi Vidyapeeth in Varanasi. There, he came under the influence of the greatest intellectuals and nationalists of the country.
Shastri enrolled himself as a life member of the Lok Sevak Mandal founded by Lala Lajpat Rai and began to work for the betterment of the so-called lower castes under Mahatma Gandhi's direction at Muzaffarpur, Bihar. Lal Bahadur Shastri led many defiant campaigns during the civil disobedience movement and spent a total of 7 years in British jails.
When the Congress government was formed in 1946, this little dynamo of a man was called upon to play a constructive role in the governance of the country. He was appointed parliamentary secretary in his home state of Uttar Pradesh and soon rose to the position of home minister.
He moved to New Delhi in 1951 and held several portfolios in the Union Cabinet.
After the death of Jawaharlal Nehru, Shastri became Prime Minister of India on the 9th of June 1964.
हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज्यादा से ज्यादा मेलजोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सके। संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं।
Shastri's most serious test as Prime Minister was the 1965 Indo-Pak War, and he handled the Pakistani actions with tact, firmness, and a quiet determination, securing the support of political leaders, bureaucracy, as well as the armed forces. He addressed the nation after the end of the India-Pakistan War, reiterating that any more aggression from Pakistan will be met with appropriate retaliation.
आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे।
Shastri died in Tashkent, Uzbekistan, on the 11th of January 1966, one day after signing a peace treaty to end the 1965 Indo-Pakistan War. Lal Bahadur Shastri's success lay in his approach of taking decisions based on consensus after extensive discussions. We salute the great leader.
और अब शेख उन महान लोगों की याद कर लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले पंडित रामचतुर मलिक को हम याद कर रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के वे प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया था। आज उनकी पुण्यतिथि।
Thomas Hardy passed away on this day in 1928. He was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of George Eliot. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth.
और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और कवि दूधनाथ सिंह की। दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से 60वीं भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को चुनौती दी थी।
सर एडमंड पर्सिवल हिलरी पास्ड अवे दिस डे 2008। ही वाज अ न्यूजीलैंड माउंटेनियर एक्सप्लोरर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑन 29 मई 1953 हिलरी एंड शेरपा माउंटेनियर तेंजिंग नॉर्गे बिकेम द फर्स्ट क्लाइमर्स कन्फर्म टू हैव reached the summit of Mount Everest.
बिल्कुल। और आज जयंती है भारत की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा कामत की। वो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी सिनेमा में सक्रिय थी। रेखा कामत की पहली फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी। उसका नाम था लाखाची गोश्त।
क्या
Yes, and Rahul Sharad Dravid was born on this day in 1973. He's a former cricket player, ex-captain, ex-coach of the Indian national cricket team, known for his outstanding batting technique. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. He is colloquially known as Mr. Dependable and often referred to as the Wall.
बिल्कुल श्रोताओं, तो अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप अगर इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.onorairnews.gov.in पर।
नमस्कार
नमस्कार।